जन्म मरण के चक्र का अंतिम संस्कार हम सभी जानते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण इस बात से परिचित हैं। परंतु संस्कारों का भी कोई संस्कार होता है, ये बात तो पता नहीं थी। उस परमात्मा पिता ने आकर समझाई कि हे आत्माओं, संस्कारों का भी कोई संस्कार होता है, जो काल चक्र में ऐसी घड़ी आई जो परमात्मा को संस्कारों का संस्कार करने की बात समझानी पड़ी। दिव्य विभूति हम सभी के समक्ष बैठे हैं। उनका जन्म अलौकिक माता सरस्वती, जिनको हम बड़े प्यार से मम्मा कहते हैं, उनसे हुआ। ब्रह्मा बाप ने सर्व अधिकार और सर्व स्वरूप से पालना दी। शिव बाबा ने आप समान बना दिया। माँ देवी संतोषी इस रूप में जिनका गायन और पूजन है, ऐसी एक विभूति हम सभी के समक्ष है। आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पवित्र संतोष दीदी जी, हम बहुत 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 स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज सोचा दीदी जी के परिचय में क्या कहूं। जो फरिश्तों का बादशाह भगवान को प्रत्यक्ष कर रहा है, उसके वर्णन में क्या कहूं। फिर भी दो बातें कहनी पड़ेगी। दीदी जी 50 वर्ष से तपस्या स्वरूप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भृगु ऋषि ब्रह्मा बाबा ने आपको मैनेजर की उपाधि से बहुत छोटी आयु में ही सम्मानित किया था। वर्तमान समय महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जोन इंचार्ज है। अथक और अविरत सेवा के हम सभी टीचर्स बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आदरणीय दीदी जी से सुनते हैं, ज्वालामुखी योग द्वारा संस्कारों का संस्कार। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। मम्मा ने सदैव ईश्वरीय ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए हम बच्चों को कर्म अकर्म और विकर्म की बड़ी गहन गति समझाई, जिस गहन गति को समझने के बाद ही हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाने का लक्ष्य जीवन में रख सकते हैं। आज हम लोग जिस ज्वालामुखी योग के लिए चर्चा करने वाले हैं, मम्मा ने बड़े सरल शब्दों में इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और वो करने के लिए कैसी हमें प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिकल में करके बताया। मम्मा हमेशा ये बात हमें समझाती थी कि ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिस विद्यालय का संस्थापक, जिस विद्यालय का परम शिक्षक परम सतगुरु स्वयं परमात्मा बाप है, उसने आकर के हमें बहुत ही सरल भाषा में बताया कि जीवन में हरेक व्यक्ति के दो खाते होते हैं, एक है प्लस और दूसरा है माइनस। मम्मा हमेशा इस भाषा में हमें समझाती थी कि ये जो प्लस का खाता है इसको माइनस करने के लिए कौन सी युक्ति है, और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म प्लस करने के लिए, जमा करने के लिए क्या युक्तियां। क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दो मुख्य सब्जेक्ट है, एक है ज्ञान और दूसरा है राज्ययोग। ज्ञान के आधार पर हम अपने भविष्य श्रेष्ठ कर्मों को जमा कर सकते हैं, और किए हुए जो अनेक जन्मों के विक्रम है 63 जन्मों के, उसको चुक्तु करने के लिए, उसको माइनस करने के लिए है सहज राज्ययोग। क्योंकि विकर्मों का बोझा ये हर एक आत्मा के खाते में बहुत बड़ा है, और खास तो हम जो सृष्टि के आदि से लेके पुनर्जन्म के चक्कर में आई हुई आत्माएं हैं, हमारा खाता काफी बड़ा। बाबा कहते कि पुण्य आत्माएं भी तुम ही बनती हो, और द्वापर से लेकर के पापात्माएं भी तुम, महान आत्माएं जो है विस्मृति के कारण तुम ही बनते। अभी इतना जो 2500 बरस का खाता है उसको चुक्तु करने के लिए हमें जो सहज योग है, जिस सहज योग कोई मम्मा ने बड़ी सहज शब्दों में बताया, मम्मा को कोई कहते थे मम्मा, शिव बाबा इतना छोटा सा बिंदु है उसको याद करने में जरा मेहनत लगती है, मम्मा कहती थी जरूरत नहीं है, शिव बाबा लाल लाल बड़ा गोला है उसको तुम याद करो, वो भी याद, उसके लिए तुमको खास मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को अभी जो विशेष ज्वाला रूप योग की बात बताई, मम्मा ने अपने ईश्वरीय जन्म से ही उस योग की अग्नि को प्रज्वलित किया हुआ था। बच्चे छोटे छोटे होने के कारण बाबा बहुत इजी कर देते थे कि अगर समझो व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो कोई बात नहीं है, परंतु तुम्हारे से कोई विक्रम नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसका खाता बनता। परंतु शुरू से लेके मम्मा ने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि व्यर्थ संकल्प चलना इसका भी खाता है, इसीलिए मम्मा ने अपने संकल्पों को फुल रीति से कंट्रोल करके चलाया, और उसके लिए सारी सारी रात बैठ करके तपस्या की। और मम्मा हमेशा बच्चों को समझाती थी, हम बच्चों को, कि बाबा आज तुमको कहते हैं कि संकल्प विकल्प चलते हैं तो कोई बात नहीं, पर एक दिन ऐसा आएगा जब मम्मा हमें कहेगा बच्चों को कि ये संकल्प विकल्प चलना भी खाते में जमा होता है। बाबा ने कहा ना, शिव बाबा को भूलते हो, ये भी तो पाप है ना, तो इसीलिए खुद के संकल्पों के ऊपर अटेंशन देने की आवश्यकता। तो अभी हम देखते हैं कि जिस प्रकार सोने को प्योर बनाने के लिए अग्नि में डाला जाता है, वैसे ही हम आत्माओं में जो गोल्डन एज थी, सोने तुल्य थी, जिनमें अनेक आलाएं पड़ गई, आत्मा तमो प्रधान बन गई, आयरन एज बन गई, वो आलाएं निकालने के लिए योग की अग्नि की बड़ी आवश्यकता। और आपको पता होगा जब सोने को प्योर बनाया जाता है तो धीमी अग्नि काम नहीं करती है, उसके लिए बड़ी पावरफुल अग्नि चाहिए, जो सोना अलग हो जाए और आलाएं पिघल करके अलग हो जाए। तो उसी प्रकार पावरफुल योग की स्टेज, इसको योग की अगन कहा जाता है। और योग की अगन क्या चीज है? ईश्वरीय लगन में मगन होना, यही वास्तव में अगन। जब तक ईश्वरीय लगन नहीं है तब तक वो अगन का रूप नहीं लेती है। और ईश्वरीय लगन को बढ़ाने के लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो हम देखते हैं, लगन उसकी लगती है जिसका दिल से बाबा के साथ प्यार होता है। बाबा हमेशा हम बच्चों को ये बात समझाते हैं कि मुझे दिमाग से याद नहीं करो, मुझे दिल से याद करो। मैं दिलाराम हूँ, दिमाकाराम नहीं। बाबा को दिलाराम कहते हैं ना, दिलाराम का गायन है, दिलाराम के मंदिर हैं। तो दिल से बाबा को याद करना, अर्थात ही प्यार से बाबा को याद कर। और बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि अगर तुम्हें सर्व खजाने प्राप्त करने हैं तो मैंने तुम बच्चों को सर्व खजानों की चाबी दे दिया है, उस चाबी को लगाओ, सब खजाने छिम छिम करके तुम्हारे आगे खड़े हो जाएंगे। वो क्या चाबी आप सबको मालूम है ना, आप लगाते भी है ना वो चाबी, क्या है बताइए? मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा तो वो सब खजाने तुम्हारे। तो ये जो लगन की अगन है इसको प्रज्वलित करने के लिए थोड़ी मनन और चिंतन की आवश्यकता होती है। जितना जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं उतना उतना हमारी लगन बढ़ती है। जितनी लगन बढ़ती है उतनी उस लगन में मगन होने की स्थिति बढ़ती है, क्योंकि मनन चिंतन लगन और उसके बाद है मगन। तो भक्ति मार्ग में भी गीत गाते हैं लोग कि मीरा भी मगन हुई हरि गुण गा करके, हरि के गुण गा गा के उसके लगन में वो मगन हो गई, ऐसी मस्तानी हो गई जो उसको गिरधर के बिगर कोई दिखाई नहीं पड़ता था। तो उसी प्रकार अगर सदैव हम ज्ञान दाता और ज्ञान का सिमरण करते हैं, जिसको ही कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ, जितना जितना हमारा सिमरण चलता है, जितना जितना हमारा चिंतन चलता है, उतनी उतना हमारी मगन की स्थिति बढ़ती जाती है। जिसका ज्ञान का मनन और चिंतन चलता है उसका ध्यान कहाँ नहीं जा सकता, वो व्यर्थ संकल्पों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। मनन करने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है। जितना हमारा पढ़ाई की तरफ ध्यान है, बाबा की मुरली से जितना हमारा प्यार है, उतना उतना ज्ञान का मनन और चिंतन हम करते हैं। जिस मनन और चिंतन के द्वारा हमको ऐसे रतन मिलते हैं जो सहज ही हमारी बुद्धि बाबा के साथ लग जाती है, तो बाबा जैसा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो जितना जितना ज्ञान को बैठ के घोटते हैं अर्थात ही विचार सागर मंथन करते हैं, उतना उतना हमको ईश्वरीय नशा चढ़ता है। ये जो ईश्वरीय नशा है वास्तव में देखा जावे तो यही लगन की स्थिति। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया हुआ है कि तुम बच्चों को सदैव इस बात की स्मृति रहे कि अब हमें वापस घर जाना है। अगर ये हमें याद रहता है कि मुझे वापस अपने घर जाना है, तो हमारे याद की जो स्थिति है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि मुझे वापस अब घर जाना है तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी। तैयारी के बगैर तो घर जा नहीं सकते हैं। तो उसकी तैयारी क्या है? उसकी तैयारी यही है कि मुझ आत्मा को पावन बन करके जाना है, विकर्मा जीत बन करके जाना है, गोल्डन एज स्थिति में मुझे वापस जाना है। जिस स्थिति में मैं इस सृष्टि पर आई थी उसी स्थिति में मुझे वापस जाना है। इसीलिए घर जाने की बात बाबा ने हम बच्चों को पक्की कराई कि अब घर जाना है। अब घर जाना है याद रहता है तो स्थिति स्वतः ही उपराम होती जाती। तो बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे, तुम साक्षीपन की स्थिति को अगर अपने जीवन में धारण कर लेते हो तो साक्षी बनने से साक्षी होकर इस खेल को देखो, अपने पाठ को भी साक्षी होकर के बजाओ, तो साथी सदैव तुम्हारे साथ। तो जितनी जितनी देह, देह की दुनिया और देह की बातों से हम न्यारे रहते हैं, उतने उतने बाप के प्यारे बनते जाते हैं, उपराम बनते जाते हैं, उतनी उतनी हमारी लगन बढ़ती जाती है। और जितनी लगन हमारी बढ़ती है उतनी उतनी हमारे अंदर ईश्वरीय याद जो है वो परिपक्व होती जाती है, हमारी अवस्था भी पक्की होती जाती है। और उसी याद की अग्नि के द्वारा हमारे जो किए हुए विक्रम है वो विनाश होते हैं, क्योंकि वैसा हम चलते फिरते जब बाबा को याद करते हैं तो वो भी याद है, परंतु उस याद से विक्रम विनाश नहीं होते हैं, पर हमारे द्वारा कोई भी विक्रम नहीं होते हैं, हम पाप कर्म करने से बच जाते। तो साधारण याद से पाप कर्म करने से बचते हैं, परंतु जब पावरफुल याद रहती है तभी क्या होता है, पावरफुल याद के द्वारा हमारे किए हुए विक्रम विनाश होते हैं। और जब विक्रम हमारे विनाश होते हैं तो उसकी अनुभूति हमें क्या होती है? जिस प्रकार हम देखो रास्ते में से चल रहे हैं और हमारे हाथ में कोई भारी वजनदार चीज है, अगर कोई हमारे से वो ले लेता है, कहता है हमको दो, हम उठा करके चलते हैं, तो कितना हल्कापन महसूस होता। तो उसी प्रकार जैसे जैसे हमारे विक्रम विनाश होते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में हल्कापन आता जाता। बाबा हमेशा कहते बच्चे, डबल लाइट होकर के चलो। मैं आत्मा भी लाइट हूँ और ये देह भी लाइट है, परंतु ये जो डबल लाइट की स्थिति है इसकी अनुभवी अनुभव तब होता है जब विकर्मों का बोझा हम आत्माओं में से कट होता जाता है, हम आत्माएं हल्की होती जाती है। और जो हल्की चीज है वो कभी धरनी पर नहीं रहती है, वो ऊपर उड़ती। तो विक्रम विनाश होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारी लगन क्या होती है, बाबा से लगती जाती है। ज्यादा बाबा की जो याद है वो याद में हम स्वतः ही स्थित होते जाते हैं। और ये तो जरूर है जब हमारी लगन बढ़ जाती है तो बाबा ने ये भी हमें पक्का कराया है, तुमको अकेलों को नहीं जाना है पर सबको साथ में लेके जाना। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये बात पक्की कराई कि तुम ये जो भी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं तुम इनके पूर्वज, तो पूर्वज होने के नाते सर्व का उद्धार करना, सर्व आत्माओं के पापों को भस्म करने के लिए तुम्हें मदद करनी है। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे सदैव ईश्वरीय याद में रहो, क्योंकि हम जितना जितना ईश्वरीय याद में रहते हैं उतना उतना वायुमंडल बनता जाता है, और जिस वायुमंडल के कारण, वायुमंडल पावरफुल होने के कारण अन्य आत्माएं जो है वो भी पाप कर्म करने से बचती है। और ये जो पांच तत्व है, ये तमो प्रधानी पांच तत्व जो है, ये हमारे याद के बल से सतो प्रधान बनते हैं। जिस प्रकार बाबा पतित पावन है, वो हम आत्माओं को पतित से पावन बनाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुमको मास्टर पतित पावन बनाता हूँ, तुम्हारे याद के बल से ये पांच तत्व जो है ये क्या बनते, पावन बनते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें अपनी योग की अग्नि को इतना प्रज्वलित करना है जो सामने वाली आत्माओं के जो पाप है वो भी दगत करने में उनको मदद हो, ये पांच तत्व भी पावन बने और ये तुम्हें अंत के समय पर मदद करे। क्योंकि अगर किसी को हमने मदद की हुई होती है, सहयोग दिया हुआ होता है, तो आई वेला में वो हमको सहयोग देते। बाबा ने हम बच्चों को ये बात अच्छी तरह से पक्की कराई हुई है कि अगर तुमने इन पांच तत्वों को पावन बनाने में मदद की हुई है तो अंत के समय ये तत्व तुम्हें हैरान नहीं कर सकते। तुमको पहले से ही तुम्हारी बुद्धि की लाइन भी क्लियर रहेगी और तुमने इनको मदद किया है तो तुमको पहले से ही मालूम पड़ेगा कि ये तत्वों का जो प्रकोप है ये होने वाला है, तो तुम वहां से क्या हो जाएगे, दूर हो जाएगी। जिस प्रकार बताते हैं ना, बिल्ली के पुंगरे जो थे वो बच गए, सारे मटकों को आग लगी, परंतु वो जो मटका था वो सेफ रहा। परंतु सेफ भी कौन रह सकते हैं, जिन्होंने इनको सहयोग दिया है तत्वों को, वो उनको ही वो सेफ रखे। अगर हमने आज किसी को सहयोग नहीं दिया, हम साकार बाबा थे तो बाबा हम बच्चों को समझाते थे, तुम जाते हो जाके दूसरों को कहते हो, हाल वाले को कहेगी हमारे को हाल दो, हम प्रदर्शनी करना चाहते हैं, फ्री में दो, हम लोगों की सेवा करते हैं, वो तुमको सहयोग नहीं देगी। परंतु तुमने पहले से उनकी ज्ञान और योग से सेवा की हुई होगी तो तुम जाएंगे तो वो क्या करेंगे, तुमको जाने की भी जरूरत नहीं, वो सामने से ही कहेंगे, बहन जी आप इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, आप हमारे पास आओ, आकर के लोगों के लिए प्रदर्शनी लगाओ। तो आपने सहयोग दिया होगा तो जरूर वो आपको सहयोग देंगे। जिस प्रकार व्यक्तियां हम सहयोग देने के बाद हमको सहयोग देती है, उसी प्रकार ये तत्व जो है ये भी तुम इस समय पर उनको योग का सहयोग देते हो तो ये अंत के समय तुम्हारे को योग का सहयोग देंगे। नहीं तो औरों को बहा के ले जाएंगे तो तुमको भी ये नदी बहा के ले जाएगी, समुद्र बहा के ले जाए। परंतु हमने अगर इनको योग की शक्ति दी हुई होगी तो ये भी हमारे को क्या करेंगे, उससे बचाएगी। तो बाबा ने हम बच्चों को जो लगन की अगन को प्रज्वलित करने के लिए कहा, तो हमेशा अगर हमें ये याद रहता है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, आप लोग क्या गीत गाते हैं, मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई गाते हैं ना, गाते नहीं गाते, गाओ देखो, मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, ऐसा गाते हो क्या, मेरा तो एक बाबा और भी कोई कोई, हाँ ऐसा कोई गीत गाता है, ऐसा गीत कभी नहीं गाएगा। सब बाबा के जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में यही है कि हमारा तो एक बाबा है दूसरा नहीं कोई। तो जब प्रैक्टिकल में हमारा ये उसके साथ सर्व संबंध है, सर्व संबंध जब बाबा के साथ हमारे जुट जाते हैं और हम जब बाबा की याद में, पावरफुल याद में बैठते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम लाइट हाउस और माइट हाउस। बाबा हमारे को सिर्फ लाइट नहीं बनाता है, लाइट तो लिमिटेड होती है, जैसे देखो ये ट्यूबलाइट है या बल्ब है, ये क्या है, थोड़ी जगह को ही प्रकाशित करता है, पर जो लाइट हाउस है वो क्या करता है, चारों तरफ सबको प्रकाश देता है। तो बाबा हम बच्चों को लाइट हाउस बनाता है, तुम्हें सर्व को रास्ता बताना है, तुम्हें सबको लाइट और माइट दोनों भी देने का काम करना। तो इसीलिए तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी है, बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और ये हमेशा हमें ध्यान रखना है जवाबदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो बहुत बड़ा टीचर है। जो अपने को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं उनका सदैव खुद के ऊपर ध्यान रहता है। जिस प्रकार टीचर औरों को पढ़ाता है उसी प्रकार जो जवाबदारी है ये हमें पढ़ाती है कि मेरी जवाबदारी है मुझे विश्व को पावन बनाना है, इसीलिए मुझे अलर्ट जरूर रहना है। आप देखो वैसा भी देखते हैं हम जिंदगी में, बच्चे छोटे होते हैं तो कितने अलबेले होते हैं, पर जब वो बड़े होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है परिवार की, कितने अलर्ट होके चलते हैं। कहते हैं नहीं अभी वैसा बचपना तो नहीं चलेगा, अभी तो हमको अलर्ट होकर के चलना ही पड़ेगा। वो सिखाना नहीं पड़ता है किसी को, परंतु वो स्वतः ही उनके अंदर क्या हो जाती है, वो अलर्टनेस आ जाती, चुस्ती आ जाती है। तो उसी प्रकार जब हमारी बुद्धि में ये रहता है कि मुझे तो बाबा के पास पावन होके जाना ही है, परंतु उसके साथ साथ अन्य आत्माओं को भी मुझे लेकर के जाना है, तो इसीलिए मुझे मेरे कर्मों के ऊपर, बाबा ने कहा ना ये तो बचपन का स्लोगन है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा कर्म और करेंगे। अभी तुम बच्चों की जो स्टेज है, तुम बच्चों की स्टेज के अनुसार तुम्हें सदैव ये याद रखना है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा वायुमंडल बनेगा। हमारे संकल्पों से सृष्टि, देखो कहते हैं ना ब्रह्मा को संकल्प उठा उसने सृष्टि रच दिया, तो ब्रह्मा के संकल्प से अगर नई सृष्टि रची जाती है तो क्या हम ब्राह्मणों के संकल्प से नई सृष्टि में आने वालों में परिवर्तन हम नहीं ला सकते, खुद में परिवर्तन नहीं ला सकते? तो बाबा हम बच्चों के द्वारा सृष्टि को चेंज करने का कार्य करता है, हम मुख के द्वारा कहाँ तक किसके पास पहुंचेंगे? हम अभी खुद भी देख रहे हैं बाबा हम बच्चों से यही चाहता है, ये पावरफुल योग वाले ही कर सकते हैं। आप देखो बाबा ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो उस समय बाबा कहते थे देखो बच्चे मेरे को तो साकार तन का क्या है लिमिट आ जाती है, टाइम की लिमिट आ जाती है, परंतु जब बाबा अव्यक्त बना तो साकार का भी बंधन छूट गया, टाइम की भी लिमिट खलास हो गई। परंतु अभी बाबा ने, बाबा अव्यक्त होने के बाद आज कितनी सेवाएं बढ़ी, इसका कारण क्या है? इसका कारण नहीं हम लोगों ने टीवी में दिया, रेडियो में दिया, फलानी जगह दिया, इसीलिए बाबा के इतने ढेर बच्चे बने, इसलिए नहीं बने। बाबा ने जो ऊपर बैठ करके अव्यक्त वतन में बैठ करके संकल्पों की सेवा की है और कर रहा है, उससे इतने बच्चे बाबा के सन्मुख आ रहे। आज देखो यहाँ अगर हाथ उठाने को लगाएंगे कि साकार बाबा के होते हुए कितने बच्चे थे, जरा हाथ ऊपर करो, देखो कितने थोड़े, कोई गिने चुने हैं। और इतनी जो बड़ी वंशावली है, क्योंकि ब्रह्मा की दो वंशावली गाई जाती है, एक है ब्रह्मा मुख वंशावली और दूसरी है ब्रह्मा की संकल्पों की वंशावली, तो आज ब्रह्मा बाबा के संकल्प से इतने बच्चे तैयार हुए हैं। तो बाबा अब हम बच्चों से ये चाहता है कि जिस प्रकार ब्रह्मा के संकल्पों से आप सब तैयार हुए हैं, आपके संकल्प से ऐसी अन्य आत्माएं तैयार हो, उसके लिए हमारे को पावरफुल योग की बहुत आवश्यकता है। तो जितना जितना हम उस पावरफुल स्थिति में स्थित रहते हैं, उस ईश्वरीय लगन में मगन रहते हैं, उतना उतना अनेक आत्माएं क्या होती है, बाबा के नजदीक आती है। क्योंकि आपको मालूम होगा चुंबक का काम क्या होता है, आप देखेंगे चुंबक में इतना चुंबकत्व होता है, उसको अगर एक सुई आप लगाओ तो क्या होती है, उसमें भी वो चुंबकत्व आ जाता है। बच्चे खेलते हैं ना, टाचनी लगाएंगे या सुई लगाएंगे, लंबी पूछड़ी बना देते, एक को दूसरी, दूसरी को तीसरी, वो सब में उसका चुंबकत्व आ जाता। तो उसी प्रकार जब हमारा बुद्धि का योग बाबा के साथ होता है, हमारा बुद्धि का योग होने के कारण अनेक आत्माओं का भी कनेक्शन हम क्या करते हैं, बाबा के साथ करते हैं। क्योंकि वो जो सुई लगी हुई होती है उसका कनेक्शन दूसरी सुई से नहीं, उसके चुंबकत्व के कारण इसमें वो ताकत होती। अगर उसका ऊपर वाली का कनेक्शन टूट गया तो सब नीचे वाले भी गिर जाते, तभी बाबा कहते हैं कि हरेक ब्राह्मण को ये याद रखना है कि हमारे पीछे बहुत बड़ी क्यू है। तो अगर हमारे पीछे क्यू है, अगर हम खड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारी क्यू खड़ी हो जाएगी। अगर हम गिर जाएंगे तो ऐसा होता है ना, कभी कभी रास्ते में से जाते जाते गाड़ियां टकराती हैं, आगे की गाड़ी टकराएगी तो सब गाड़ियां उसको आगे टकराती। तो उसी प्रकार हमारे ऊपर इतना मदार है, तो बाबा की हमारे ऊपर बहुत ही आशाएं हैं कि अभी बच्चे ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के द्वारा बाप का साक्षात्कार हो, और वो तभी हो सकता है जब बच्चों में इतनी योग की पावर हो। बाबा एक बार अव्यक्त बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा देखो जिस समय तुम्हारा योग पावरफुल होता है, तुम्हारी स्थिति एकदम अच्छी होती है, तो तुम्हारे में से तुम्हारे जो भगत है उनको साक्षात्कार होता है और वो नजदीक आना चाहते हैं, आना चालू करते हैं, अरे ये हमारा इष्ट देव है, ये हमारी इष्ट देवी है। जब तक वो तुम्हारे पास आवे तुम अपना रूप ही बदली कर डाल, जो ऊंची स्थिति है उससे नीचे आ जाते हो तो वो रूप बदली हो जाता, वो बेचारे वापस चले जाते हैं, समझते चलो रॉन्ग नंबर लग गए। परंतु अगर हम सदैव उस स्थिति में स्थित रहे तो इतनी आत्माएं जो भटक रही है उनको ठिकाना मिल जाएगा। उसके लिए हमारे को अपनी योग की जो स्थिति है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा साकार बाबा थे, बाबा सारी सारी रात जागते थे बैठकर। कभी कोई बच्चे जाते थे तो बाबा से पूछते थे बाबा क्यों आपको नींद नहीं आ रही है? बाबा कहता था नहीं आज बहुत बांधेली गोपिकाएं हैं ना, बहुत पुकार रही है, चिल्ला रही है, उनको बहुत उनके ऊपर सितम हो रहे हैं, मैं उनको साकाश दे रहा हूं। तो जैसा बाबा को उनका आवाज आता था, आप खुद भी सुनते हैं ना बाबा की मुरली में, क्या तुमको दुखियों का आवाज नहीं सुनाई पड़ता है? क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? क्योंकि तुम खुद के आवाज में बिजी हो। अगर तुम आवाज से परे रहने की प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, उन दुखियों का आवाज तुमको सुनाई पड़ेगा, दुखियों का आवाज सुनाई पड़ेगा तो क्या होगा, तुमको उनके ऊपर रहम आएगा, रहम आएगा तभी तुम उनके ऊपर दया करेगे, तभी तुम उनका उद्धार करेगे, नहीं तो कैसा उद्धार करेगे। तो बाबा इसीलिए हम बच्चों को कहता है ये ज्वालामुखी योग माना लाइट हाउस और माइट हाउस। जैसा लाइट हाउस बैठ करके चारों तरफ अपना प्रकाश फैलाता है, ऐसी पावरफुल स्थिति बना करके जिसमें मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, ऐसी पावरफुल स्थिति बना करके और पीछे सबको क्या करो, जो भटकी हुई आत्माएं हैं, जो दुखी आत्माएं हैं, जो तड़पती हुई आत्माएं, उनको रास्ता बताने का काम करो। जब तक उनको तुम ठिकाने नहीं लगाते तब तक वो बेचारे पहुंच नहीं सकते वहां पर। और यहाँ ये भी हमको पता है कि अभी जितना समय बीतता जाता है उतना उतना कमजोर आत्माएं आती है। तो जिस प्रकार किसी को किसी के टांगों में ताकत नहीं होती है तो उसको सपोर्ट देके चलाना पड़ता है, सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकते वो। तो उसी प्रकार ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए भी उनको क्या चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। पर सपोर्ट वो देगा जिसमें खुद में ताकत होगा, खुद के ज्ञान और योग की अगर ताकत नहीं होगी तो हम दूसरे को कैसा सपोर्ट दे सके, खुद में अगर शक्ति नहीं होगी तो दूसरों को शक्ति कैसा दे सके। तो इसीलिए शक्ति का स्टॉक जमा करने के लिए हमारे को बाबा की जो याद है वो निरंतर याद रहे, और उसे निरंतर याद करने के लिए थोड़ा सा हमारे को अमृत वेले विशेष अभ्यास करने की आवश्यकता। उस समय हम ज्यादा पावरफुल स्थिति में रह सकते हैं क्योंकि वातावरण जो होता है वो बड़ा पावरफुल होता है, उसको ब्रह्मलोक ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, अमृत वेले को भक्ति मार्ग में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय हम सहज ब्रह्मलोक में जा सकते, ब्रह्मलोक में जैसी शांति है माने शांति धाम, तो ब्रह्मलोक में जैसे शांति है उस समय सब सोए पड़े रहते हैं तो शांत वातावरण होता, तो शांत वातावरण भी हमारे को क्या करता है, मदद करता है और हम सहज बाबा के पास जा सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बीज रूप की स्थिति अर्थात बाप समान की स्थिति। जैसा बीज में सारा झाड़ मर्ज हुआ पड़ा रहता है उसी प्रकार ये जो बीज रूप की स्थिति है इसमें सर्व गुण और सर्व शक्तियां मर्ज रूप में होती है। तो जितना जितना उस स्थिति में रहेंगे उतना उतना वो इमर्ज रूप में शक्तियां और गुण हमारे अंदर आते जाते। तो तभी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम जो तपस्वी आत्माएं हैं तुमको ऐसी तपस्या करनी है पावरफुल तपस्या। देखो आप देखेंगे जो ऋषि मुनि हैं जो पावरफुल तपस्या करते हैं तो बताते हिंस्र पशु भी क्या करते हैं उनके आसपास घूमेंगे पर उनको कभी तकलीफ नहीं दे उनके ऊपर भी उसका असर होता है। तो उसी प्रकार हम जहां भी रहते हैं आप प्रवृत्ति में रहते हैं इतने वर्षों से ज्ञान में चलते हैं इतने वर्षों से बाबा को याद करते हैं योगी और पवित्र जीवन बिताते हैं तो क्या खुद को देखना है कि ऐसा हमने वातावरण बनाया है जो कोई भी वहां आवे हमारे घर में तो उसको ऐसा लगे मैं शांति के स्थान पर आ गया। जैसा नहीं आप आश्रम में लेके आते हैं मधुबन में लेके आते हैं कितनी महिमा करते हैं अरे हमारे तो इतनी शांति तो कहां नहीं हो सकती। आप साकार बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी या सुनी होगी आपको मालूम है क्या नहीं पता नहीं परंतु ब्रिजिंद्रा दादी बताती थी बाबा का जब लौकिक जीवन था जिस समय शिव बाबा की प्रवेशता भी नहीं हुई थी उस समय भी बाबा के इतने शांति के वातावरण थे बाबा के अंदर से ऐसे वाइब्रेशन और ये आते थे बाबा के अंदर से ऐसी लाइट आती थी जो कोई भी घर से डिस्टर्ब होते थे व्यापारी लोग किसी धंधे से या कुछ किसको टेंशन होता था तो बाबा के पास आके बैठ जाते थे पेड़ी पर दुकान पर और बैठे रहेंगे। बाबा पूछेगा आपको कुछ काम है तो नहीं हम दादा हम आपके पास आते हैं ना हमको बहुत शांति लगती। तो देखो फर्स्ट नंबर की जो आत्मा है लास्ट जन्म में भी 84 जन्म में भी उसके अंदर वो संस्कार भरे हुए थे। अभी शिव बाबा ने प्रवेशता किया ब्रह्मा बाबा ने बहुत तपस्या किया और उस तपस्या का फल हम बच्चों को मिला। बाबा के आगे जाने के बाद वो अनुभूतियां हुई कि कैसी डेड साइलेंस क्या है शांति धाम की शांति क्या है वो तो अलग बात रही परंतु लास्ट जन्म में भी बाबा के अंदर वो संस्कार थे जो अशांत आत्माएं भी उनके आगे आगे शांत हो जाती। तो उसी प्रकार ये देख बाबा भी तो प्रवृत्ति में रहता था उसने छोड़ा तो नहीं था ना उस समय तो उसको कुछ भी मालूम नहीं था वो तो बाद में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तभी वो ब्रह्मा बना परंतु उसके पहले तो एक व्यापारी था ना साधारण व्यक्ति था परंतु उस समय भी उसके अंदर वो संस्कार थे। हम उसी बाप के बच्चे हैं ना तो हमारे अंदर भी ये संस्कार होने चाहिए जो कोई भी आवे तो बाबा तभी कहता है बच्चे तुम प्रवृत्ति को प्रवृत्ति नहीं समझो तुम उसको सेवा स्थान समझो तुम ऐसा नहीं समझो ये हमारा घर है नहीं ये बाबा का घर है बाबा ने आपको वहां पर रखा है किसके लिए सेवा करने के लिए रखा है। आप अपने से पूछो ने बाबा ने ब्राह्मणों को जन्म किसके लिए दिया पहले भी हम खाते थे पीते थे सोते थे घूमते थे अभी भी अगर वो ही करेंगे तो क्या अंतर रहा। बाबा ने ब्राह्मणों को पैदा ही किया है सेवा करने के लिए ब्राह्मण माना सेवाधारी। तो हमारे द्वारा सिर्फ बाबा का परिचय देना सेवा इतनी नहीं है परंतु हमारे मुख के द्वारा भी हमेशा बाबा का नाम औरों तक पहुंचता रहे हमारे कर्मों द्वारा भी बाबा को बाबा का साक्षात्कार औरों को होता रहे। साकार बाबा कहते थे बच्चे देखो मेरे जो बच्चे हैं ये तुम लोग म्यूजियम बनाते हैं ये बहुत अच्छा है लोगों को समझाने के लिए पर वास्तव में देखा जावे तो मेरे बच्चे ही चेतन म्यूजियम। जैसे नहीं मोबाइल वाहन होते हैं हाँ मोबाइल डिस्पेंसरी है मोबाइल पोस्ट ऑफिस है ना जगह जगह पर जाके खड़े हो जाते हैं जिसको जो चाहिए वहां खरीद कर। तो तो उसी प्रकार तुम बच्चों को देखने के बाद उनको सुख शांति आनंद प्रेम इसकी अनुभूति होवे किसी न किसी गुण की, किसी न किसी शक्ति की, तभी तुम क्या कर सकते हो, बाबा का उनको अनुभव करा सकते। तुम्हारी मूरत के द्वारा बाबा की सीरत दिखाई पड़े, बाबा के गुण दिखाई पड़े। तो जब ये गुण दिखाई पड़ते हैं किसी के द्वारा ऐसे, तो कहते हैं अरे ये किसका बच्चा है, खुद ही पूछते। तो उसी प्रकार जब हमारे में, हमको ये लक्ष्य रखना पड़ता है कि हमारे द्वारा औरों को बाबा का साक्षात्कार होना चाहिए। साक्षात्कार तब होगा जब हम साक्षात बाप के समान बने, और साक्षात बाप के समान हम तब बन सकते हैं जब हमारा लक्ष्य इतना पक्का होता है, तब अपने ऊपर अटेंशन होता है, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपनी योग की पावर को बढ़ाने के लिए, याद की लगन को बढ़ाने के लिए, दिल का बाबा के साथ प्यार बढ़ाने के लिए हमारे को अभ्यास भी करने की आवश्यकता होती है। तो बाबा जो अमृत वेले का समय बोलता है, निमा शाम का समय बोलता है, और सारे दिन की दिनचर्या के ऊपर अपने अटेंशन रखने के लिए बाबा जो घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहता है, वो हमें ख्याल में रख। अभी आप लोगों को साकार मुरली बाबा की याद होगी, थोड़ा समय पहले बाबा की साकार बाबा की मुरली थी कि बच्चे अभी तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसी ये पुरानी दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। तो इतनी उपराम स्टेज दुनिया में रहते हुए हमारे लिए तो है नहीं, हम तो उससे न्यारे हैं, परंतु आप तो साथ में रहते हैं सबके, बड़ी बात तो यही है। साथ में रहते हुए उनको देखते हुए उनसे कार्य व्यवहार करते हुए भी ऐसी स्टेज हो गए तो बताओ बाबा का नाम कितना बाला हो जा। तो ऐसी स्टेज बना करके हमारे जो किए हुए विक्रम है, जैसे बाबा पूर्वज का, तो पूर्वजों का क्या काम होता है, पूर्वजों को याद होता है, ख्याल रहता है ना कि हमारी जो वंशावली है उसको वो सुखी रहे, वो शांत रहे। तो ये सारी जो मनुष्य आत्मा है ये हमारी वंशावली है, इनको सुख शांति का दान देना ये हमारा काम है। ये तभी हम दे सकते हैं जब हम उस पावरफुल स्टेज में स्थित रहते हैं। तो उसके लिए जितनी जितनी अंतर्मुखता को हम धारण करते हैं, ईश्वरीय याद में रहने की प्रैक्टिस करते हैं, उतना उतना हमारी ईश्वरीय लगन बढ़ती जाती है, और जिसके द्वारा ही सर्व विघ्न जो है वो खलास हो जाते हैं। हम लोगों का गायन है ना विघ्न हरता, पहले तो हमें खुद के विघ्न विनाश करने हैं, और उसके बाद सारी सृष्टि के विघ्न विनाश करके क्या करना है, नई दुनिया को लाना है। बाबा कहता है ना बच्चे विनाश तुम्हारे लिए खड़ा है, फिर ऐसा अलबेले नहीं हो जाना कि हमारे लिए खड़ा है तो भले खड़ा रहे, हम ऐसे ही रहेंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, पुरुषार्थ तो विनाश होगा ही नहीं। नहीं, वो तो जब होना है तभी होगा ही, परंतु हमें एवर रेडी रहना है, अर्थात तैयार रहना है, विघ्न विनाशक बन के रहना है, जो औरों के भी विघ्न हमारी योग की शक्ति से विनाश हो जावे, और ऐसी योग की ज्वाला बढ़ के जिसमें सारे विक्रम भस्म हो जावे। देखो वैसे ज्वाला तो हमेशा गर्माश देने वाली होती है, नहीं ज्वाला के नजदीक भी जाएंगे तो गर्मी लगती है, परंतु ये योग की ज्वाला क्या करती है, ये ठंडास देती है। जितनी जितनी योग की अग्नि प्रज्वलित होती है उतनी उतनी हमारी कर्म इंद्रियां शीतल होती जाती है। तो कर्म इंद्रियां शीतल होने से क्या होता है, विकारों के ऊपर तो विजय आप ही हो जाती है ना। तो माया जीत जगत जीत बन जाते हैं, इसीलिए विशेष अटेंशन देके अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके तपस्या करके हमें क्या करने का है, सामूहिक रूप से योग की ज्वाला को प्रज्वलित करने का कार्य करना है। एक जगह पर थोड़ी ज्वाला लगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है, परंतु बहुत बड़ी ज्वाला होती है तो जला देती है। तो बाबा यही चाहते सब ब्राह्मणों का एक ही संकल्प हो, सब ब्राह्मणों की याद इतनी पावरफुल हो जिससे क्या हो, ये पुरानी सृष्टि जो है ये नई बन जाए। अच्छा, ओम शांति।